ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी का ये सौभाग्य है कि डॉक्टर सचिन भाई हमारे सामने हैं। सबसे पहले करतल ध्वनि से हम भाई सबका बहुत 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 स्वागत करेंगे। भाई साहब पिछले 13 सालों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल पर नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम द्वारा आपने ईश्वरीय ज्ञान की कुछ धारणाओं पर बहुत ही सहजता से प्रकाश डाला है। भाई साहब को कविताएं लिखने का भी बहुत शौक है। आपने इंग्लिश में बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। भाई साहब मेधावी छात्र हैं। आप यवतमाल महाराष्ट्र से MBBS गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके पश्चात मुंबई से MD इंटरनल मेडिसिन, FCCM इंडो ऑस्ट्रेलिया से, FICM, FCCS, IDCC USA से, हैदराबाद से फेलोशिप इन डायलिसिस, कोलकाता से MD अल्टरनेटिव मेडिसिन। आप ताली बजा सकते हैं। DPH डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ। ऐसी कई सारी डिग्रीज भाई साहब ने बहुत कम समय में प्राप्त की हुई हैं। आपने मुंबई के BSES MG हॉस्पिटल में इंटेंसिविस्ट इन ICU ICCU के रूप में और हिंदुजा हॉस्पिटल के ICU में क्लिनिकल असिस्टेंट के रूप में कुछ समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। साथ ही साथ आपने अपोलो हॉस्पिटल बेंगलोर, फिनोमिनल हॉस्पिटल लातूर और सुजय हॉस्पिटल मुंबई में भी इंटेंसिविस्ट के रूप में काम किया है। वर्तमान समय आप ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट के रूप में पिछले 6 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब बहु प्रतिभा के धनी हैं। बायोडाटा तो बहुत बड़ा है, अगर पूरा सुनेंगे तो भाई साहब को नहीं सुन पाएंगे। तो मुझे लगता है भाई साहब को सुनना बहुत जरूरी है। भाई साहब के लिए हम बस यही कहेंगे, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्ष की भांति फलता है कोई कोई। सभी प्रवीण हैं ऊंची ऊंची बातें करने में, सभी प्रवीण हैं ऊंची ऊंची बातें करने में, मगर परिश्रम के सांचे में ढलता है कोई कोई, मगर परिश्रम के सांचे में ढलता है कोई कोई। सचमुच भाई साहब ने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारी प्रतिभाओं को अपने अंदर भरा हुआ है। हम बीके भाई बहनों का भी जब भाई साहब क्लास कराते हैं तो सचमुच में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। वो तो आपके व्यक्तित्व से, आपके उद्बोधन से ही अनुभव करेंगे। तो समय ज्यादा न लेते हुए हम भाई साहब से निवेदन करेंगे। डॉक्टर सचिन भाई जी, ओम शांति। भाई साहब का हम गुलदस्ते और बैज से भी स्वागत करेंगे।
ओम शांति। एक जैन फकीर को कभी कुछ मित्रों ने भोजन के लिए बुलाया। जो मुख्य व्यक्ति था जिसने बुलाया उसका घर सातवीं मंजिल पर था। कहानी जापान की है। और जब वो फकीर उस मित्र के घर गया, वहां और कई सारे दूसरे लोग भी थे, वो जो सभी मित्र थे, लगभग 20-25 लोग। भोजन चल रहा था कि अचानक भूकंप आ गया। जापान में ऐसे भूकंप आते रहते हैं। और जैसे ही भूकंप आया, सारे मित्र भागे। सातवीं मंजिल थी, दरवाजा एक ही था, सीढ़ियों की तरफ सबके सब भागे। परंतु वो फकीर बैठा रहा, आंखें मूंद ली और शांत था। सारे मित्र जब भाग रहे थे, तो जो मुख्य व्यक्ति था, जिसका घर था, उसने सोचा, एक बार पीछे मुड़कर तो देखूं कि जिस फकीर को मैंने बुलाया है उसका क्या हाल है, क्योंकि वो नहीं भागा। और जब उस मित्र ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो ज़ेन फकीर शांत मुद्रा में बैठा हुआ है, निश्चल अविचलित। तो उसके मन में संकल्प आया, जरा मैं भी तो रुक कर देखूं, जो इस गुरु का होगा वही हाल मेरा भी हो जाए तो क्या। और वो रुक जाता है, वापस आ जाता है, गुरु के सामने, उस फकीर के सामने आकर बैठ जाता है। भूकंप आता है और भूकंप चला जाता है। वो ज़ेन फकीर आंखें खोलता है और वहीं से अपना प्रवचन चालू करता है जहां से उसने छोड़ा था भूकंप से पहले। वो मित्र कहता है, मुझे तो ये भी याद नहीं क्या आप बोल रहे थे, मुझे तो ये भी याद नहीं किस बात की चर्चा यहां हो रही थी, क्योंकि बीच में इतना बड़ा भूकंप जो आ गया, सारा शहर हिल गया, चारों ओर हाहाकार, चारों तरफ लोग भाग रहे हैं। मुझे ये नहीं सुनना जो आप सुना रहे हैं, मेरा तो एक ही प्रश्न है, मुझे ये बताना कि जब हम सब भाग रहे थे तो आप क्यों नहीं भागे, जब इतना बड़ा भूचाल, इतना बड़ा भूकंप आ गया तो आप क्यों नहीं भागे। उस दिन फकीर ने कहा, मैं भी भागा, पर तुम बाहर भागे, तुम वहां भागे जहां भूकंप था, सातवीं मंजिल पर भी भूकंप था, तुम छठवीं मंजिल पर भागे परंतु वहां भी भूकंप था, तुम पांचवीं मंजिल पर भागे परंतु वहां भी भूकंप था, जो बिल्डिंग में थे, जो इमारत में थे, वो सड़क पर भागे परंतु सड़क पर भी भूकंप था, जो घर में थे वो सड़क पर भागे, जो सड़क पर थे वो घर में भागे, पर भूकंप तो सर्वत्र है, सर्वत्र भूकंप ही तो भूकंप है। मैं भी भागा परंतु मैं अंदर भागा, मैं वहां भागा जहां निष्कंप है, मैं वहां भागा जहां अकंप है। व्यक्ति भागता वहां है जहां सुरक्षा हो, और बाहर सुरक्षा कहां, चहु और भूकंप ही तो है। पर मुझे इस बात का थोड़ा डर था, शायद यदि मैं शरीर छोड़ने से पहले उस स्थान पर नहीं पहुंच जाऊं, इसका जो आंतरिक स्थान है जहां पर संपूर्ण सुरक्षा है, अंतस की गहराई में जो वो स्थान है वहां मैं ना पहुंचू, इसका खाली मुझे डर था, क्योंकि यदि मैं शरीर छोड़ देता, परंतु जैसे ही मैं पहुंचा मैं शांत हो गया और स्थिर हो गया। भागना दो तरफ है, एक बाहर एक अंदर। दौड़ दो तरफ की है, एक बाहर एक अंदर। हम किस ओर भाग रहे हैं, दिशा कौन सी है? क्या वहां भाग रहे हैं जहां भूकंप ही भूकंप है और सोच रहे वहां हम सुरक्षित हो जाएंगे, या वहां भाग रहे हैं जहां निष्कंप है? और आंतरिक जो दौड़ है और आंतरिक जो मार्ग है वो बना नहीं है, वो बनाना पड़ेगा। अध्यात्म के आकाश में पंछी जब उड़ता है कोई भी, तो जैसे पंछी अपने कोई चिन्ह नहीं छोड़ता, उसी तरह कोई महान आत्मा भी बस उस तरह के चिन्ह नहीं छोड़ती। जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए वो आदर्श भले है, परंतु हरेक को मार्ग अपना खुद बनाना पड़ेगा। चीन का एक सम्राट कभी अपने वजीर के साथ समुद्र के तट पर खड़ा था और सम्राट ने कहा, देखो कितनी सारी हजारों नाव जहाज एक साथ आ रहे हैं। उस वजीर ने कहा, नहीं महाराज, हजारों नहीं है, केवल सात है, सात ही जहाज है बस। सम्राट ने कहा, कौन सी? उस वजीर ने कहा, केवल सात ही जहाज है जिस पर मनुष्य सवार है। पहली धन की नाव, दूसरी नाम की नाव, प्रतिष्ठा की नाव, तीसरी इच्छाओं की नाव, चौथी जिम्मेदारी निभाने की नाव, पांचवी संबंध निभाने की नाव, छठवी मनोरंजन की नाव और सातवीं शारीरिक स्वास्थ्य की नाव। सारी मनुष्य जाति बस इन्हीं में से किसी एक नाव में ही सवार है। हम किस नाव में सवार हैं? इससे पहले कि हम क्लास की शुरुआत करें, एक छोटा सा योग का प्रयोग करेंगे, इसलिए सभी अलर्ट होके बैठेंगे। डायरी, पेन, पेंसिल सब कुछ नीचे। चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। संपूर्ण मौन और आत्माभिमानी स्थिति। अस्तित्व के अनंत सागर में, जीवन के इस अनंत सागर में मैं आत्मा आज स्वयं को देखती हूं। अंतहीन यह अस्तित्व। और मैं आत्मा किस नाव में सवार हूं, जीवन के अनंत सागर में मैं किस नैया में हूं। क्या इच्छा की नैया में हूं, नाम और प्रतिष्ठा की नैया में हूं, क्या धन की नैया पर सवार हूं, और कहां भटक रही है यह जहाज, ये नाव कहां जा रही है। किस और ये इच्छाएं ले जा रही है, किस और ये संबंध जिन्हें मैं पूर्ण कर रहा हूं, किस और ये जिम्मेवारियां जिन्हें मैं निभा रहा हूं। किस और मनोरंजन की यह नैया, यह डिजिटल बोट कहां बैठा हूं और कहां पर जा रहा हूं। क्या तूफान में कहीं खो तो नहीं गया, क्या देह और देह के स्वास्थ्य को ठीक करते करते स्वास्थ्य की या नहीं है, सब कुछ होते हुए भी अपूर्ण नहीं है, ये कैसी रिक्तता है, ये कैसी अपूर्णता है। देख रहा हूं स्वयं को, किस नैया में मैं बैठा हूं, ये धन की दौड़, यह अतृप्ति और अज्ञात बेचैनी कहां जा रहा, किस और। एक मार्ग बाहर जाता है, एक अंदर। जिन नैयाओं को हमने देखा वो सारी की सारी नाव बाहर जाने वाली थी, ये सारी की सारी दौड़ बाहर की थी। क्या ऐसा भी कोई मार्ग है, क्या ऐसा भी कोई पथ है, क्या ऐसी भी कोई राह है, अननोन, अनचार्टेड, अनआइडेंटिफाइड, अनसंग, अनएक्सप्लोर्ड, अनबिनोन, अज्ञात, अस्पष्ट, अनरिवील्ड, अनआइडेंटिफाइड, जिस पर अब तक कोई नहीं चला और जिस पर केवल मैं ही चल सकता हूं और मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं चल सकता। क्या ऐसा भी कोई मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर जीवन परम तृप्ति को पाए, जीवन में जो अपूर्णता है और जो बेचैनी है वो पूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए। वह मार्ग, the unknown, the pathless, मार्ग रहित मार्ग कौन सा है, उसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। pathless अर्थात कई सारे अर्थ हैं इसके, मार्ग रहित, राह रहित, पथ रहित, अननोन, अज्ञात, अनसंग, जिस पर शायद कोई भी नहीं चला और मेरे अतिरिक्त उस मार्ग पर कोई भी चल भी नहीं सकता, क्योंकि वो मार्ग अंदर का मार्ग है, मेरे अंदर का मार्ग है, मेरे जीवन का मार्ग है। कोई कितना भी प्रकाश बाहर से जलाए तो भी उस मार्ग को आलोकित नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्ग बना ही नहीं है, उसे मुझे बनाना है। आई हैव टू क्रिएट द पाथलेस पाथ। महात्मा बुद्ध को उनके शिष्य ने पूछा, आनंद ने, जब वो मरणशैया पर थे, अब शरीर छोड़ा तब शरीर छोड़ा, हे प्रभु मुझे ये बताए कि मेरे निर्वाण का मार्ग क्या है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा पाली भाषा में, अप दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, स्वयं को प्रकाशित स्वयं करो, स्वयं की ज्योति स्वयं बनो, स्वयं का दिया स्वयं जगाओ, कोई तुम्हें दूसरा दिया नहीं जगा सकता, तुम्हारा दिया। दो मित्र जा रहे हैं किसी जंगल से, एक के हाथ में लालटेन है, दूसरे के हाथ में नहीं है, दूसरा सोचता है कि मुझे क्या आवश्यकता है, ये तो प्रकाश काफी है ना। परंतु रास्ते में चलते चलते एक राह ऐसी आती है कि मार्ग वहां पर अलग हो जाते हैं, जिसके हाथ में लालटेन है वो कहता है अब मैं इस मार्ग से जाऊंगा, और दूसरा मित्र जिसे किसी और मार्ग से जाना है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश किसी और का था, और किसी और के प्रकाश से, किसी और की सहायता से, किसी और की मदद से, किसी और के अध्यात्म से और किसी और के चिंतन से हम कब तक चलेंगे। स्वयं का प्रकाश, हमें स्वयं बनना पड़ेगा, स्वयं का मार्ग स्वयं खोजना पड़ेगा, और ये मार्ग बाहर का नहीं है, आंतरिक है, अभियंतर का है, इंटरनल है, और अत्यंत सूक्ष्म है, और पाथलेस है, अनचार्टेड है, अनएक्सप्लोर्ड है, जो शायद हमने आज तक कभी लिया ही नहीं। बाहर कितने भी दिए जला दो, कितनी भी दिवालियां मना लो, परंतु अंदर तमसोमा ज्योतिर्गमय नहीं होगा, तो उस मार्ग की हम आज चर्चा करेंगे। ये मार्ग अंदर का है, कैसे जाए, कैसे पहुंचे उस स्थान पर जो अकंप है, उस स्थान पर जहां कोई भूकंप नहीं है, उस स्थान पर जहां स्वयं जागृत ज्योति है, प्रकाश है, आलोक है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं। क्या ऐसा भी कोई स्थान अंदर है? है, एक स्थान है जो हमारे ही अंदर है। परंतु जब भी किसी को भी ये कहा जाता है मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने अंदर जाओ, मिलेगा जो मिलना है अंदर मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है, जैसे ही व्यक्ति अंदर जाने का प्रयत्न करता है, भयंकर कुछ तो हो जाता है अंदर, और उस भय के कारण वो अंदर जा नहीं पाता। जाना हरेक चाहता है, उसे इतना भी पता चल गया है कि बाहर जो है अस्तित्व, बाहर जो दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं झूठ है, मिथ्या है, ढोंग है, आडंबर है, दंभ है। वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, उसे इतना तो आभास है कि मैं अनंत हूं, और अनंत को कभी भी अनंत ही तृप्त कर सकता है। संसार की कोई व्यक्ति, कोई वस्तु उस अनंत को कभी तृप्त नहीं कर सकती। इन्फिनिट कैनॉट बी सैटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट। तो तो क्यों भयभीत होता है व्यक्ति जैसे ही अंदर मुड़ता है, जैसे ही स्वयं को देखता है, जैसे ही अंदर जाता है। हरेक को कोई ना कोई बाहर चाहिए। अगर उसे एकांत में रखा जाए तो बेचैनी होती है, कोई तो चाहिए बात करने के लिए या कुछ करने के लिए। ट्रेन में देखा होगा आपने, कोई व्यक्ति बैठता है, कभी बैग खोलता है, किताब निकालता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी किसी से बात करता है। शांत बैठा बहुत ही कम, कुछ ना कुछ तो करता है, खिड़की से देखता है, किसी से बात करता है, किसी को पुकारता है, टीसी से बात करता है, यात्रियों से बात करता है। एक पल वहां नहीं है जहां वो शांत है। जरूर कुछ तो बेचैनी है जिसे वो भरना चाहता है, कुछ तो रिक्तता है और अपूर्णता है। और जब उसे कहा जाता है कि अंदर जाओ, जब धार्मिक संस्थाओं में जाता है, धार्मिक स्थानों पर जाता है, भजन कीर्तन गायन पूजन देवताओं का करता है और सब उसको कहते हैं अंदर जाओ, जैसे ही अंदर आंखें बंद करता है भयंकर दृश्य दिखाई देने लगते हैं। डरता है, नहीं जाना चाहता अंदर, उससे तो अच्छा है बाह्यमुखी होकर जियो, आसपास लोग नहीं तो भय लगता है, डर लगता है। क्यों? तो जैसे ही हम अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं, साथ ऐसी बातें आ जाती है। और उन सात बातों से पार कैसे जाए, क्योंकि वो सात बातें बीच में आएगी और उसके पार वो है जो हमारा लक्ष्य है। सबसे पहला, जैसे ही व्यक्ति अंदर जाने का प्रयत्न करता है, फर्स्ट थिंग जो उसे मिलती है वो है अंधकार, भयंकर अंधकार जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अज्ञान का अंधकार। जैसे ही आंखें बंद करता है इतना घटाटोप अंधकार है कि भयभीत हो जाता है, सोचता है इससे तो अच्छा है बाहर ही रहूं। इतना भयंकर अंधकार कौन सा है पता नहीं, अज्ञात है, शायद स्मृतियां है, मेमोरीज है, पास्ट है, अतीत है, यादें है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, क्या है पता नहीं, परंतु आंखें बंद करते ही एक भयंकर अंधकार, पश्चाताप है, प्रायश्चित है, बदला है, हर्ट्स है, टॉर्चर है, क्या है, अनडिफाइंड है, डर लगता है। परंतु जिसे अंदर जाना है उसे इस अंधकार को पार करना पड़ेगा। वो कैसे, उसे हम आगे देखेंगे। जैसे ही अंदर मुड़ता है व्यक्ति अंधेरा, चेतना जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है, अंधकार, तारीकी, स्टार्क डार्कनेस, और आगे बढ़ता है तो एक घना जंगल उसे मिलता है। इतना भयंकर घना जंगल, वो जंगल है आसक्तियों का जंगल, अटैचमेंट्स का जंगल। इतने लोगों से इतनी अटैचमेंट्स, इतना लगाव है, इतना लगाव है कि वो लगाव एक घने जंगल का रूप धारण किए हुए अंदर बैठा हुआ है। और आगे बढ़ता है क्योंकि उसे अंदर जाना है, उसकी चाह है मैं अंदर जाऊं, क्योंकि सभी से सुना है अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ, नो थाई सेल्फ, हील थाई सेल्फ, तुझा है तुझ पाशी, कहां है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। जीसस क्राइस्ट को पूछा गया हु आर यू, वो कहता है आई एम सन ऑफ गॉड, वेर इज योर फादर, माय फादर दैट आर्ट इन हेवन, वेर इज हेवन, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। But how will we know that how you are related to your father, my father and I are one? पर वो विदिन और वो विदिन का किंगडम, वो विदिन का साम्राज्य कैसे पहुंचे। अंधकार आया, फिर जंगल आया, आसक्तियों का, लगाव का, मोह का, और अंदर गए तो आग आई, भयंकर आग, कामनाओं की आग, वासनाओं की आग, काम की आग। द फायर ऑफ पैशन, जो अंदर नहीं जाने देती, उसको भी पार किया और अंदर गए। चौथा, भीड़, भयंकर भीड़ लोगों की, इतनी भीड़, इतनी भीड़ की, उस भीड़ के अंदर कैसे जाए और कैसे पहुंचे जो गंतव्य है। भीड़ को भी पार किया और अंदर गए। आवाज, शोरगुल, इतना आवाज, इतना आवाज कि अंदर नहीं पहुंचने देता वो आवाज। किसका आवाज है पता नहीं, दूसरों का है या खुद का ही है। दमित भावनाओं का, सप्रेस्ड फीलिंग्स एंड सप्रेस्ड इमोशंस का है, किसका है पता नहीं, पर रोकता है, एकाग्र नहीं होने देता वो आवाज। और आगे साथ छठवा, वीरान बस्ती, एक वीरान बस्ती, निराशा की, दुख की, नकार की, होपलेसनेस की, जिसमें व्यक्ति आंतरिक दुखी है, पर बाहर से दिखा रहा है मैं बहुत सुखी हूं, बाहर से दिखा रहा है मेरे पास सब कुछ है। फ्रेडरिच नीत्शे को किसी ने कभी पूछा था, जर्मन फिलोसोफर, कि आप ये हंसते क्यों हो बीच बीच में। फ्रेडरिच नीत्शे ने कहा था, मैं हंसता इसलिए हूं कि अगर हंसू नहीं तो शायद रो दूंगा, क्योंकि दुख इतना है अंदर, उस दुख को मैं छिपाए हुए हूं हंसी से। निराशा, क्यों है पता नहीं, पर है। जब दूसरे कहते हैं और हमें पता चलता है बहुत ज्यादा है, तो शायद किसी के पास जाकर कुछ दवाइयां भी लेते हैं, पर दवाइयां उसको मिटा नहीं पाती, क्योंकि बीच कहीं और है, वो वीरान बस्ती। और सातवां, दिशाहीन अस्तित्व में जीवन की भटकती नैया। ये सात बातें, जब भी हम अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं, एक अंधेरा आ जाता है, बढ़ नहीं सकते कदम, कैसे जाए। किताबें हैं, अध्यात्म है, संस्थाएं हैं, स्थान है, गुरु है, चैनल्स है, मीडिया है, बहुत है, पर कोई भी अंधकार को काट नहीं पाता। और आगे बढ़ते हैं, जंगल, भयंकर जंगल, इतने संबंध और इतनी आसक्तियां बढ़ा रखी है कि पहुंच ही नहीं पाते। तीसरा, आग, आग की तरह है कामना, आग की तरह है वासना, चित्त को आंदोलित करती है। बैठे यहां है, परंतु सामर्थ्य कामना में इतना है कि देह खींचता है। सौंदर्य का भ्रम आकर्षित करता है चित्त को। चौथा, भीड़, इतनी भीड़ है, कैसे जाए अंदर, अंदर भी भीड़, बाहर भी भीड़। एक फिलोसोफर कभी हुआ था इकहार्ट, वो कभी जंगल में बैठा था अकेला, चुपचाप, गुमसुम, अपने ध्यान में मगन, अपने मौन में। उसके कुछ मित्र वहां से गुजर रहे थे, उनको लगा बेचारा अकेला बैठा है, क्यों ना उसके पास जाए। वो उसके पास गए, इकहार्ट के पास, और कहने लगे, हमें लगा प्रोबेबली यू आर इन सॉलिट्यूड, शायद आप अकेला महसूस कर रहे हो, इसलिए हम आपके पास आए हैं। इकहार्ट कहता है, तुम जब नहीं आए थे तब मैं कंपनी में था, अब जब तुम आ गए हो तो मैं अकेला हो गया हूं, बिकॉज आई वॉज इन द कंपनी ऑफ माई सुप्रीम बिलवेड। और अंदर आवाज, इतना शोरगुल, इतना नॉइज, इतना क्लटर, इतनी हसल बसल कि कैसे अंदर जाए, वो आवाज ही रोक देता है। और अंदर वीरान बस्ती निराशा की, कैसे अंदर जाए, और अंदर दिशाहीनता एमलेसनेस। अंदर देखते ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब क्या करें, कैसे जाए अंदर। पहला, जैसे ही अंदर हम देखते हैं, पहला बताया अंधकार है। अंधकार को कैसे मिटाएंगे, यदि किसी एक कमरे में 1000 वर्ष से अंधकार है और हमें उस अंधकार को मिटाना है तो क्या करें, सेना लेकर आए, तलवार लेकर आए, अंधकार बहुत शक्तिशाली है, शत्रु जैसा मालूम पड़ रहा है, कैसे हटाएं उस अंधकार को, युद्ध करें अंधकार से, क्या करेंगे। प्राचीन लोक कथा है, मनुष्य जाति के पास जब प्रकाश नहीं था लोग अंधकार में जीते थे, और रात जब आती थी तो अंधकार हो जाता था, समझ नहीं आता था किसी को कैसे अंधकार को दूर करे, पूजाए की अंधकार नहीं गया, आरती की प्रार्थना की अंधकार नहीं गया। एक युवक था बड़ा ही विचारशील, उसने कहा क्यों ना हम टोकरियां भर भर कर अंधकार को बाहर गांव के फेंके। बात बहुत तर्कसंगत थी और सभी गांव वाले ने कहा बहुत अच्छी बात है, और तब से उन्होंने जैसे ही रात होती थी टोकरियां भरकर अंधकार को फेंकने लगे। परंतु सुबह उठते तो खुश होते, परंतु जब रात हो जाती फिर दुखी होते, क्योंकि अंधकार जस का तस मिटा ही नहीं। लोक कथा कहती है प्राचीन भारत की कि उस एक युवक को वहां पर किसी अप्सरा से विवाह हो गया। वो अप्सरा उस गांव में आती है और उसकी सास, जैसे वो प्रथा बन चुकी है, रात हुई टोकरियां भरो अंधकार को बाहर फेंको। उसकी सास उसको कहती है कि जाओ टोकरियां भरो, रात हो रही है, अंधकार को फेंको। वो आश्चर्य होता है उसको, ये क्या हो रहा है इस गांव में। एक बर्तन में वो घी डालती है, सफेद कपड़े से बाती बनाती है, दो पत्थरों को रगड़ती है और आग जलाती है, और उसके बाद फिर प्रकाश हो गया और अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। अंधकार समाप्त हुआ, परंतु मनुष्य के जीवन में आज भी वैसा ही अंधकार है, आज भी वो वही कर रहा है, और ज्ञान का उसे भ्रम मात्र है कि मैं जानता हूं। सोक्रेटिस ने लिखा है, सुकरात, कि जब मैं छोटा सा बच्चा था सोचता था मैं सब कुछ जानता हूं, फिर थोड़ा जब युवा हुआ पता चला अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, और अब जब बूढ़ा हो गया हूं ये समझ में आया कि कुछ भी नहीं जानता, और जब उसने ये जाना नहीं जानता हूं, तब ओरेकल ऑफ डेल्फी में वहां पर घोषणा हुई कि इस संसार में द वाइसेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज सोक्रेटिस। टू नो दैट आई नो नॉट इज कंप्लीट नॉलेज, इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नॉलेज, इज द इंसेप्शन ऑफ नॉलेज। ये जानना कि मैं कुछ नहीं जानता, जो जान रहा हूं वास्तव में शायद एक भ्रम है। न्यूटन से किसी ने कभी पूछा था, आप इतने ज्ञानी कैसे, इतना ज्ञान आपके पास है, शायद कुछ पाना बाकी ही नहीं है। समुद्र तट पर वो खड़ा था, उसने रेत का एक कण लिया और कहा जो मैं जानता हूं वो ये रेत का कण है, और जो रेत यहां दिखाई दे रही है और उसके जितने कण है वो जानना बाकी है। तो सबसे पहली बात हमने जो कही, अंदर मुड़ते ही अंधकार आता है, अंधकार को कैसे मिटाएंगे, प्रकाश से, ज्ञान से। अस्तित्व का ज्ञान, जीव जगत ईश्वर का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, सार का ज्ञान, जो आप यहां पर पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं, यही ज्ञान अंधकार को मिटाएगा, नहीं तो वो अंधकार वैसा ही बना रहेगा। और जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं हो जाती, तब तक ये अंधकार नहीं मिटेगा। तो क्या लाना है जीवन में? ज्ञान के आलोक को, प्रकाश को। और अंदर घना जंगल है आसक्तियों का। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। अगर रिकनेक्ट करना है तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। वैराग एक ऐसा शब्द है, अगर किसी के कान में कह दो तो भाग खड़ा हो जाता है, डर लगता है ऐसे शब्दों से। पर क्या अध्यात्म की यात्रा बिना अनासक्त हुए चालू हो सकती है? क्या लगाव से युक्त व्यक्ति कभी उस परम सत्य को जान सकता है जिसका ध्यान बटा हुआ है, आसक्त है, मोहित है? ये मार्ग तो अनासक्ति का है, आंतरिक है, अभियंतर का है। जो जंगल हमने खड़ा कर रखा है इतना बड़ा खटाटोप, उसको काटना पड़ेगा कुल्हाड़ी से, तलवार से। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। और आगे आग लगी है जीवन में, काम की, कामना की, इच्छाओं की, शांत नहीं होने देती, एक पल भी बैठने नहीं देती, बेचैन करती है। कितना भी भोगो परंतु वंस मोर की कामना के साथ ही व्यक्ति शरीर छोड़ता है। शास्त्र ययाति की कहानी सुनाते हैं, इतना भोगा परंतु अतृप्त ही रहा। इच्छा का स्वभाव ही अतृप्त है, अतृप्ति है। वासना की फितरत में ही डिससैटिस्फैक्शन है। कितना भी भोगो कभी तृप्ति नहीं होती। दुष्पूर है वासनाएं, महात्मा बुद्ध ने कहा है, दुष्पूर अर्थात कभी न तृप्त होने वाली। लहरों की तरह है, लहरें आती है, आती ही जाती है, बेअंत। ये जो आग लगी है इसको शांत करना पड़ेगा, आग को पवित्रता के शीतल जल से। किससे? पवित्रता के शीतल जल से। और आगे भीड़ है बहुत अंदर मन में, एकांगी पगडंडी ढूंढनी पड़ेगी जहां एकांत है। कुछ समय अपनी दिनचर्या में समटाइम एकांत का हो, एटलीस्ट 8 o'clock सुबह या 9 o'clock तक, सम स्पेस, इनर स्पेस, जहां हम रहे और कोई ना हो, केवल हम, और देखे क्या पाया और क्या खोया। जीवन किस ओर जा रहा है, लक्ष्य क्या है जीवन का, क्यों मैं हूं, ये जो विस्तार कर रखा है किस लिए? एकांत। और अंदर आवाजें है, शोरगुल है, वहां चाहिए मौन। कितना समय हम मौन रहते हैं 24 घंटे में? साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। महात्मा गांधी ने 6 जून 1910 यंग इंडिया एक में एक आर्टिकल लिखा था मौन के विषय में। लिखा है कि मैं जब साउथ अफ्रीका में था, वहां पर एक बार हम लोग एक मठ में गए, ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री। उस मठ में जाकर हमने देखा कैसा अद्भुत सा नियम है वहां पर, इतना बड़ा आश्रम, 5,000 सन्यासी वहां है, सबके सब मौन व्रत धारण किए हुए। उन्होंने उस मठाध्यक्ष को पूछा कि क्यों, द हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, उसने कहा कि हम मनुष्य इतने अल्पज्ञ है, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना हमें वास्तव में पता नहीं, और जब तक हम ये नहीं सीख लेते इस आश्रम में कि क्या बोलना चाहिए, हम तब तक मौन ही हैं, और हमारी मौन साधना है। कितना हम मौन हैं, या सुबह से लेकर आवाज आवाज और आवाज, मुख से ना बोले परंतु सोशल मीडिया की आवाज, व्हाट्सएप नॉइस, व्हाट्सएप क्लटर, आवाज 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 आवाज। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। गुरु बैठा है, शिष्य बैठे, कुछ भी नहीं बोल रहा है, मौन का वार्तालाप है, मौन का व्याख्यान है, परंतु शिष्य के सारे संशय दूर हो रहे केवल मौन से। लैंग्वेज जो है साइलेंस की इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। हैव वी टेस्टेड दैट लैंग्वेज? हैव वी टेस्टेड दैट नेक्टर, दैट फ्रेग्रेंस, दैट ब्यूटी, दैट एक्सटेसी, दैट रैप्चर ऑफ वॉइसलेसनेस, साउंडलेसनेस, स्पीचलेसनेस, और वी आर लॉस्ट इन स्पीच। आवाज का ये शोरगुल, सुबह से लेकर रात तक केवल आवाजें आवाजें आवाजें, बेअंत। क्या मौन के लिए कोई स्थान नहीं है जीवन में? क्या उस मौन में हम नहीं उतर सकते जहां पर परम सत्य का अवतरण होगा? क्या इस आवाज में कभी सत्य प्रकट हो सकता है? क्या इस आवाज में हम जीवन को वैसा जान सकते जैसा वो है, एज इट इज? कहीं खो तो नहीं रहे आवाज की दुनिया में? महात्मा गांधी ने और एक जगह लिखा है अपनी जीवन कहानी में, द शील्ड ऑफ शाइनेस चैप्टर नंबर 9, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। Desire to exaggerate, propensity to modify or suppress the truth is natural with man and silence is necessary to surmount it. हम सत्य का छेड़छाड़ करते, सत्य को दबाते, सत्य को मॉडिफाई करते हैं, इसलिए साइलेंस आवश्यक है। और जब तक जीवन में कुछ समय, सुबह का समय और रात का समय, सोने से पहले कुछ समय, एटलीस्ट हाफ आवर सोने से पहले, सारे सोशल मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप ऑफ, एटलीस्ट हाफ आवर बिफोर स्लीप, डिजिटल साइलेंस, इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस, फिर कहा निराशा की वीरान बस्ती। क्या आशा जीवन में फिर जाग सकती है? क्यों निराश है? शायद अज्ञान है इसलिए, शायद पूर्ण ज्ञान नहीं है इसलिए, शायद आशा का पता नहीं है, शायद आशा का वो दीपक अब तक नहीं जगा और हमसे वो बहुत दूर है इसलिए। और सातवां बताया दिशाहीन अस्तित्व। आप जो यहां सब आए, किस किस को लगा ऐसा कि यहां आकर जीवन का जो लक्ष्य है थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देने लगा है? हाथ खड़ा करेंगे। लगा ऐसा कि जीवन कहीं भटक रहा था और यहां आकर यहां के मौन में, यहां के निश्शब्द वातावरण में, निस्तब्ध शांतता में, पवित्र प्रांगण में आशा का यह शुद्धतम द्वीप, यहां आकर पता नहीं कौन से दिए अंदर जगे है, बता नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते, परंतु ये स्थान ऐसा स्थान है जहां पर कोई आए पर अप्रभावित, अपरिवर्तित रहे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ओशन है एक पॉजिटिविटी का, आरोहण है विधायक, ना कि निषेधात्मक पलायन। देख रहे होंगे यहां पर आप लोग कैसे हैं यहां रहने वाले, किसी के चेहरे पर किसी ने उदासी देखी, निराशा देखी, दुख देखा, संताप देखा, स्ट्रेस देखा, भागदौड़ देखी, कैसे चाय बन रहा है, कैसे भोजन बन रहा है, कब बन रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे सब आयोजन हो रहा है, चुपचाप अपने आप ऑटोमेटिक, कौन बॉस है, कौन सर्वेंट है, कौन आदेश दे रहा है ये करो वो करो ये करो ऐसा करो, कोई दिखा ऐसा करते हुए? भोजन इतनों का बन रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। कहीं वही यही तो जगह नहीं है वो जो नियति ने एक अवसर दिया है जीवन को राह दिखाने का, दिशा देने का, अस्तित्व के समुद्र में जीवन न मालूम कहां भटक रहा है। तो सात प्रतिज्ञाएं जाने से पहले सभी को करनी है। पहली, प्रकाश, ज्ञान। जो ज्ञान यहां पर आपने सुना उस ज्ञान को आप छोड़ेंगे नहीं, और जब तक उसे पूरा ना जान ले, समझ ले और जीवन में धारण ना कर ले, तब तक इस ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाथलेस पाथ क्रिएट करना है। दूसरा, ये जो जंगल खड़ा कर रखा है आसक्तियों का, द पाथ इज नैरो, जीसस कहता है बाइबल में, द पाथ इज नैरो एंड स्ट्रेट, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए, दो नहीं जा सकते इसमें, एक को ही जाना पड़ेगा, ओनली वन। इफ द आंसर नॉट टू थाई कॉल वॉक अलोन, एकला चलो रे, एकांगी पगडंडी है। जो आसक्तियों का इतना जंगल खड़ा किया है काटना पड़ेगा, दर्द होगा परंतु रिजल्ट सुखदायी होगा उनके लिए भी जिनसे हम अपनी आसक्तियों को मिटाए। और आगे, काम की आंख। इस स्थान में इतनी पावर क्यों है? क्यों है? क्यों है? एक ही कारण है, ओनली वन रीजन, संपूर्ण पवित्रता। जो शब्द आप सुन रहे हैं, जो वाक्य सुन रहे हैं, तीसरी प्रतिज्ञा पवित्रता, चौथी क्योंकि जो आग लगी है वो शांत नहीं होने देगी, चौथी प्रतिज्ञा एकांत, बीच बीच में एकांत का रसास्वादन, एकांत अमृत है, पांचवी प्रतिज्ञा इस व्यस्त दिनचर्या में मौन, कम से कम सुबह या शाम, और उस मौन में एकांत में ज्ञान चिंतन, ज्ञान मनन, स्वचिंतन, सेल्फ एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, हिंदी में एक शब्द है सिंहावलोकन, सिंह पीछे देखता है, सिंहावलोकन, रेट्रोस्पेक्शन, खुद को देखना, बचपन से लेकर अब तक क्या पाया, क्या खोया, दिशा सही है या भटक रही है, भटक रहा है यह जीवन, मौन एकांत, छठवीं प्रतिज्ञा संपूर्ण आशावादी जीवन, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, अगर नहीं है तो उसकी खोज, और सातवीं जीवन को लक्ष्य देना, इस स्थान से जब जाएंगे तो ये निश्चित करके जाना कि इसके बाद का जो जीवन होगा, यहां से जाने के बाद अब दिशाहीन नहीं होगा, उसको एक दिशा होगी। लास्ट 3 मिनट और फिर हम पूरा करते हैं, फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे। अंतिम योग का प्रयोग, तन के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, अत्यंत तेजस्वी, इस पवित्र वातावरण में और इस पवित्र प्रांगण में, देव भूमि मधुबन में आज मैं आत्मा एक प्रतिज्ञा करती हूं, भीषण प्रतिज्ञा, स्वयं से, भगवान से, अस्तित्व से, आज के बाद जीवन में अंधकार नहीं रहेगा और इस जीवन को मैं ज्ञान के अलौकिक प्रकाश से भर दूंगा। आसक्तियों का यह जंगल जिसमें मैं खो गया हूं, चेतना मूर्छित हो गई है, इसे मुझे पार करना है। और अनासक्ति की इस तलवार से इस जंगल को पार करते मैं और अंदर जा रहा हूं, और मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं संपूर्ण पवित्रता की, ये जो आग है काम की, जो चेतना को, चित्त को बेचैन किए हुए, शांत करूंगा संपूर्ण पवित्रता से, और ये जो भीड़ है मार्ग ढूंढूंगा एकांगी पगडंडी का, एकांत का, और जीवन में ये जो शोरगुल है और आवाज है इसमें ढूंढूंगा मौन को, निःशब्द को, उस निस्तब्धता को, उस स्टिलनेस को, उस कामनेस को, उस सरेनिटी को, उस ट्रैंक्विलिटी को। और ये जो वीरान बस्ती है दुखों की और निराशा की, प्रतिज्ञा करता हूं आज कि यहां खुशियों के महल खड़े करूंगा और देख रहा हूं अस्तित्व के इस समंतर में जीवन की या नहीं आ, अब इसे मुझे राह देनी है। और राह है भगवान, और राह है उसकी छत्र छाया, और राह है सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। इन सप्त प्रतिज्ञाओं के साथ मैं आत्मा अत्यंत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। नवचेतना का संचार हो रहा है, अ न्यू एनर्जी, अ डिवाइन एनर्जी, अ न्यू फैंगल्ड इंस्पिरेशन इज फिलिंग माई लाइफ, माई एंटायर बीइंग। This ecstasy, this music of, this real music of life, this fragrance of spirituality is touching every pore of mine. And today, I am fulfilled, satisfied. जीवन पूर्ण काम को पाया है। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं भाई साहब का, करतल ध्वनि से सब भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हम देख रहे थे और अनुभव भी कर रहे थे, जब भाई सब सुना रहे थे तो सारी सभा ही ऐसे बैठी हुई थी कि कोई भी शब्द रह ना जाए, कहीं हमारा ध्यान थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ ना हो जाए। और मुझे तो लग रहा था कि आप सब उस एक घटना से जरूर परिचित थे, तभी इस तरह से बैठे हुए थे। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा स्पीकर पहुंचता है, बहुत मेहनत करके उसको बुलाया जाता है, और जब वो स्पीकर पहुंचता है स्टेज पर तो सारी पब्लिक से उसका एक ही क्वेश्चन होता है, क्या आपको पता है हम क्या सुनाने वाले हैं? तो वहां से आवाज आती है, हमको नहीं मालूम है आप क्या सुनाने वाले हैं। स्पीकर तुरंत ही माइक छोड़ करके जाता है और ये कह करके जाता है कि जब आपको पता ही नहीं है हम क्या सुनाने वाले हैं तो हम क्या सुना दें। फिर दोबारा मेहनत करके उस स्पीकर को दोबारा से उस गांव में बुलाते हैं और सभी सोचते हैं अभी उसको सुनना जरूर है, कुछ भी हो जावे, और इस बार हम सभी कहेंगे कि हमको पता है। जैसे ही वो स्पीकर माइक पर आता है और बोलता है, यही प्रश्न दोबारा करता है, क्या आपको पता है हम क्या सुनाने वाले हैं, तो पब्लिक से यही आवाज आती है, हाँ हमको पता है आप क्या सुनाने वाले हैं। तो स्पीकर बोलते हैं, जब आपको पता है हम क्या सुनाने वाले हैं तो हम क्या सुनावे, और वो वहां से चले जाते हैं। अभी सब बड़ा ही परेशान है, स्पीकर को तो सुनना जरूर है, अब तो जरूर सुनना है, क्या किया जाए। फिर एक बार रिक्वेस्ट की जाती है, मिन्नत की जाती है और उनको दोबारा बुलाया जाता है और सोचा जाता है इस बार हमको स्पीकर को जरूर सुनना है, कुछ भी हो जावे। 50% पब्लिक सोचती हम कहेंगे हम जानते हैं आप क्या सुनाने वाले हैं, 50% सोचते हैं, हम कहेंगे हमें नहीं मालूम है। और जैसे ही स्पीकर आता है फिर वही क्वेश्चन, क्या आपको मालूम है हम क्या सुनाने वाले हैं? 50% लोग बोलते हैं जी हाँ हमको पता है आप क्या सुनाने वाले हैं, और अदर 50% लोग बोलते हैं हमको नहीं पता है आप क्या सुनाने वाले हैं। पुनः स्पीकर का जवाब होता है, जिन 50% लोगों को मालूम है हम क्या सुनाने वाले हैं, वो उन 50% लोगों को बता दें कि हम क्या सुनाने वाले हैं। सो स्पीकर फिर चले जाते हैं, एक लास्ट चांस और मिलता है गांव वालों को। और जब वो आते हैं तो बहुत तैयारी हो जाती है, फिर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मालूम है हम क्या सुनाने वाले हैं, और पब्लिक का जवाब होता है पिन ड्रॉप साइलेंस। बिल्कुल भाई सबको हम सभी ने ऐसे ही सुना है, तो फिर से एक बार जोरदार ताली से भाई सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बस यही कहेंगे, किसी की संगत से अगर हमारे विचार शुद्ध और उच्च हो जाएं, तो समझ लेना वह व्यक्ति साधारण नहीं है।